ओम शांति आज 9 फरवरी 2017 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? उत्तर है, अपने को अशरीरी समझना, इस देह अभिमान पर जीत पाना, यही ऊंची मंजिल है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप के सिवाय कोई याद न आए। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है, यह शरीर भी याद न रहे, यही मेहनत करनी है। गीत है, जीवात्माएं या बच्चे समझते हैं दिल में कि अभी हमको बाबा कहाँ ले चलते हैं। बरोबर जहाँ से हम आए हैं वहाँ ही ले चलेंगे। फिर हमको पुण्य आत्माओं की सृष्टि जीवात्माओं की दुनिया में भेज देंगे। श्रेष्ठ और भ्रष्ट अक्षर निकले हैं, जरूर जीव आत्माओं को ही कहेंगे। सुख व दुख जब शरीर में है तब ही भोगा जाता है। बच्चे जानते हैं कि अब बाबा आया है। बाबा का नाम हमेशा शिव है, हमारा नाम सालिग्राम है। शिव के मंदिर में सालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाबा ने समझाया था, एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ, दूसरा है रुद्र यज्ञ। उसमें खास बनारस के ब्राह्मणों पंडितों को बुलाते हैं रुद्र यज्ञ की पूजा के लिए। बनारस में ही शिव के रहने के अनेक मंदिर हैं। शिव काशी कहते हैं, असल नाम काशी था, फिर अंग्रेजों ने बनारस नाम रखा, वाराणसी नाम अभी रखा है। भक्ति मार्ग में आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो है नहीं, पूजा दोनों की अलग अलग करते हैं। एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे सालिग्राम अनेक बनाते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं का नाम है सालिग्राम, और हमारे बाबा का नाम है शिव। सालिग्राम सब एक साइज के बनाते हैं, तो बरोबर बाप और बेटे का संबंध है। आत्मा याद करती रहती है, ही परम पिता परमात्मा। हम परमात्मा नहीं है, परमात्मा हमारा बाबा है। यह समझाने की मत तुमको दी गई है। दिन प्रतिदिन तुमको श्रीमत मिलती रहती है कि कोई को भी पहले बाप का परिचय दें, वर्षा दिलाना है। पहले तुमको सिद्ध करके समझाना है कि वह निराकार बाप है, यह प्रजापिता साकार है। वर्षा निराकार से मिलता है। अब बाप समझाते हैं, मेरा एक ही शिव नाम है, दूसरा कोई मेरा नाम नहीं। सभी आत्माओं के शरीर के नाम अनेक हैं, मेरा कोई शरीर है नहीं, मैं सुप्रीम सोल हूँ। बाबा पूछते हैं, बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो सयाने होंगे वह कहेंगे देह अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे ही काम की उत्पत्ति होती है। देह अभिमान को जीतने में बड़ी मुश्किलात होती है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। जन्म जन्मांतर तुम देह के संबंध में चले हो, अब जानते हो बरोबर मैं आत्मा अविनाशी हूँ, जिसके आधार से यह शरीर चलता है। रिलीजियस माइंडेड जो है वह समझते हैं हम आत्मा है, देह नहीं है। आत्मा का नाम एक ही रहता है, देह के नाम बदलते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हमको बाप कहते हैं, तुमको चलना है पुण्य आत्माओं की दुनिया में। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। भ्रष्टाचारी रावण बनाते हैं, 10 शीश वाला कोई मनुष्य नहीं होता, परंतु इस बात को कोई नहीं जानते। सभी रामलीला आदि में पाट लेते रहते हैं, सब एक मत भी नहीं है। कोई कोई इन सब बातों को कल्पना समझते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि रावण भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। पराई स्त्री को चुराना यह भ्रष्टाचार है ना? इस समय सब भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि विकार में जाते हैं। जो विकार में ना जाए उनको निर्विकारी कहा जाता है। वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। भारत ही राम राज्य था, भारत सबसे प्राचीन था। पहले नंबर में सृष्टि पर सूर्यवंशी देवी देवताओं का झंडा बुलंद था। उस समय चंद्रवंशी भी नहीं थे। अभी तुम बच्चों का यह सूर्यवंशी झंडा है, तुमको मंजिल का पता लगा है, फिर भूल जाते हो। स्कूल में बच्चा कभी एम ऑब्जेक्ट को भूल नहीं सकता, स्टूडेंट टीचर को व पढ़ाई को कभी भूल नहीं सकते, या फिर भूल जाते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाते हो। ऐसे स्कूल में कितना अच्छा और रोजाना पढ़ना चाहिए। इस कल्प अगर नापास हुए तो कल्प कल्प नापास होते ही रहेंगे, फिर कभी भी पास नहीं होना है। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत कहती है अच्छी रीति धारणा करो और कराओ। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। अपने दिल से पूछो, हम श्रीमत पर चल रहे हैं? अपने को मियां मिट्ठू नहीं समझना है। अब अपने से पूछो, तो जैसे यह ब्रह्मा सरस्वती श्रीमत पर चलते हम ऐसे चल रहे हैं, पढ़कर और पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले व्यास हो। वह व्यास नहीं जिसने गीता लिखी है। तुम इस समय सुखदेव के बच्चे सुख देने वाले व्यास हो। सुखदेव शिव बाबा गीता का भगवान है, तुम उनके बच्चे व्यास हो, कथा सुनाने वाले। यह स्कूल है, स्कूल में बच्चे की पढ़ाई से नंबर का मालूम पड़ जाता है, वह है प्रत्यक्ष, यह है गुप्त, यह फिर बुद्धि से जाना जाता है कि हम किस लायक हैं, किसको पढ़ाने का सबूत मिला है। बच्चे लिखते हैं, बाबा फलाने ने हमको ऐसा तीर लगाया जो हम आपके बन गए। कोई तो सामने आते भी कह नहीं सकते कि बाबा हम तो आपके बन गए। कई बच्चियां पवित्रता के कारण मार भी खाती रहती हैं। कोई तो बच्चे बन फिर टूट भी पड़ते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ते नहीं। नहीं तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो और पढ़ो, इस नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। घर के बाहर भी लिख दो, एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। जनक मिसल 21 जन्मों के लिए, एक सेकंड में तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। विश्व के मालिक तो जरूर देवताएं ही बनेंगे ना। सो भी नई विश्व नया भारत, जो भारत नया था सो अब पुराना हो गया है। सिवाय भारत के और कोई खंड को नया नहीं कहेंगे। अगर नया कहेंगे तो फिर पुराना भी कहना पड़ेगा। हम फुल नए भारत खंड में जाते हैं। भारत ही 16 कला संपूर्ण बनता है, और कोई खंड फुल मून हो ना सके। वह तो शुरू ही आधा से होता है। कितने अच्छे अच्छे राज हैं। हमारा भारत ही सचखंड कहलाया जाता था। सच के पीछे फिर झूठ भी है। भारत पहले फुल मून होता है, पीछे तो अंधियारा हो जाता है। पहला झंडा है हेवन का, गाते भी हैं पैराडाइज था। हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं, क्योंकि हमको सारा अनुभव है। सतयुग त्रेता में हमने कैसे राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में क्या हुआ, यह सब बुद्धि में आने से कितनी खुशी आनी चाहिए। सतयुग को सोझरा, कलयुग को अंधियारा कहा जाता है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। बाबा ने कैसे आकर तुम अबलाओं माताओं को जगाया है। साहूकार तो कोई मुश्किल ही खड़ा होता है। इस समय सचमुच बाबा गरीब निवाज है। गरीब ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं, साहूकार नहीं। इसका भी गुप्त कारण है। यहाँ तुम बलिहार जाना पड़ता है। गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती, इसलिए सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है और सबकी ज्योत उजाई हुई है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। वंडर है ना, यह कोई साइंस की शक्ति नहीं है। तुमको अब बाबा से शक्ति मिलती है। बरोबर, यह अविनाशी चक्र है जो फिरता रहता है। इनका कोई आदि अंत नहीं है। नया कोई यह बातें सुने तो चक्री में आ जाए। यहाँ 10-20 वर्ष वालों को भी पूरा समझ में नहीं आता है, न किसको समझा सकते हैं। तुमको पिछाड़ी में सब पता पड़ जाएगा कि फलाना फलाने के पास जन्म लेगा, यह होगा। जो महावीर होंगे उन्हों को आगे चलकर सब साक्षात्कार होते रहेंगे। पिछाड़ी में तुमको सतयुग के झाड़ बहुत नजदीक दिखाई पड़ेंगे। महावीरों की ही माला है ना, पहले 8 महावीर, फिर है 108 महावीर। पिछाड़ी में बहुत फर्स्ट क्लास साक्षात्कार होंगे। गाया भी हुआ है, परमपिता परमात्मा ने बाण मरवाए, नाटक में बहुत बातें बनाई हैं, वास्तव में यह स्थूल बाणों की बात नहीं। कन्याएं माताएं बाणों से क्या जाने, वास्तव में यह है ज्ञान बाण, और इन्हों को ज्ञान देने वाला बरोबर परमपिता परमात्मा है। कितनी वंडरफुल बातें हैं, परंतु बच्चों को एक ही मुख्य बात घड़ी घड़ी भूल जाती है। सबसे कड़ती कड़ी भूल होती है जो देह अभिमान में आकर अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, सच कोई नहीं बतलाते। सच तो कोई आधा घंटा घंटा भी सारे दिन में मुश्किल याद में रह सकते हैं। कोई को समझ में भी नहीं आता कि योग किसको कहा जाता है। मंजिल भी बहुत ऊंची है, अपने को अशरीरी समझना है, जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना है, जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना पड़े। कोई तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी अच्छे होते हैं तो गद्दी पर बैठे बैठे समझते हैं, हम तत्व में लीन हो जाएंगे, शरीर का भान नहीं रहता। फिर जब उनका शरीर छूटता है तो आसपास सन्नाटा हो जाता है, समझते हैं कोई महान आत्मा ने शरीर छोड़ा है। तुम बच्चे याद में रहेंगे तो कितनी शांति फैलाएंगे। यह अनुभव उन्हों को होगा जो तुम्हारे कुल के होंगे। बाकी तो मच्छरों सदृश मरने वाले हैं। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अशरीरी होने की। यह प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो। वहाँ सतयुग में तुम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यहाँ तो तुम जानते हो यह शरीर छोड़ बाबा के पास जाना है, परंतु पिछाड़ी में कोई याद न आए। शरीर ही याद न रहे तो बाकी क्या रहा। मेहनत है इसमें, मेहनत करते करते पिछाड़ी में पास होकर निकलते हो। पुरुषार्थ वालों का भी पता तो पड़ता है ना, उनका शो निकलता रहेगा। बांधेली गोपिकाएं पत्र ऐसे लिखती हैं जो कभी छुटेली भी नहीं लिखती। उन्हों को फुर्सत ही नहीं। बांधेलियां समझती हैं शिव बाबा ने इन हाथों का लोन लिया है तो शिव बाबा का पत्र आएगा। ऐसा पत्र तो फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा। क्यों नहीं बाबा को पत्र रोज लिखें, नैनों से काजल निकाल कर भी लिखें। ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे और लिखती हैं, बाबा मैं वही कल्प पहले वाली गोपिका हूँ। हम आपसे मिलेंगे भी जरूर, वर्षा भी जरूर लेंगे। योग बल है तो अपने को बंधन से छुड़ाती रहती हैं। फिर मोह भी किस में न रहे। चतुराई से समझाना है, अपने को बचाना है, तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। माताएं समझती हैं हम पति को भी साथ ले चलें। हमारा फर्ज है उन्हों को समझाना। पवित्रता तो बहुत अच्छी है। बाबा खुद कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतूं, मुझे याद करूं, तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। ऐसी बच्चियां हैं जो पति को समझा कर ले आती हैं। बांधेलियों का भी पाठ है, अबलाओं पर अत्याचार तो होते ही है। यह शास्त्रों में भी गायन है, कामेशुं क्रोधेशुं, कोई नई बात नहीं है। तुमको तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, इसलिए थोड़ा कुछ सहन तो करना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, योग बल से अपने सब बंधनों को काट, बंधन मुक्त होना है, किसी में भी मोह नहीं रखना है। दूसरा, जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं, उन पर पूरा पूरा चलना है, अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है, मियां मिट्ठू नहीं बनना है। वरदान है त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मुंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी हैं, वे कभी किसी बात में मुंझ नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर है। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूंछता नहीं। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करती, चाहे परिस्थिति मुझाने की हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसे भी मौज में बदल देगी, क्योंकि अनगिनत बार वह पाठ बजाया है। यह स्मृति कर्म योगी बना देती है, वह हर काम मौज से करते हैं। स्लोगन है, सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो। ओम शांति।